डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 9 अधिनियम 5-6-7 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 9 अधिनियम अध्याय 5 से अध्याय 6 श्लोक 7 है। परमेश्वर यरूशलेम में प्रेरितों के माध्यम से अद्भुत कार्य कर रहा है और चमत्कार हो रहे हैं। कुछ लोगों को प्रभु के विरुद्ध उनके विद्रोह के कारण मार डाला गया था, यहोशू 7 और शायद लेविटिकस 10 की प्रतिध्वनि थी। अधिकारियों को एहसास हुआ कि खतरा दूर नहीं हो रहा था और ये लोग अभी भी यीशु की मौत के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और अधिकारी ऐसे हैं जैसे हमने सोचा था कि यह आंदोलन अपने आप खत्म हो सकता है। हम नहीं चाहते थे कि हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन अब हमें कार्रवाई करनी होगी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक स्वर्गदूत ने उन्हें रिहा कर दिया और फिर उन्हें मंदिर में प्रचार करने की आज्ञा दी गई। और फिर अध्याय के अंत में उन्हें एक फरीसी उदारवादी का समर्थन प्राप्त होता है। मैं वापस जा रहा हूं और इनमें से कुछ को अधिक विस्तार से देखूंगा। पत्रस कहता है, हनन्याह और सफीरा के विषय में शैतान ने तुम्हारा हृदय भर दिया है। प्रारंभिक यहूदी स्रोतों में शैतान को विशेष रूप से आरोप लगाने वाले, प्रलोभन देने वाले और धोखेबाज के रूप में देखा जाता था। वे पुराने नियम से आते हैं, लेकिन उन्हें विकसित किया गया था, विशेष रूप से प्रारंभिक यहूदी साहित्य में शैतान की 3 भूमिकाएं। परमेश्वर पवित्र चीजों का उल्लंघन करने वालों को मारता है, यह आपके पास लैव्य व्यवस्था 10 और पद 2 में है। आपके पास यह 2 सैमुएल 6 में भी है, जहां यह शायद अधिक अनजाने में था क्योंकि संदूक लंबे समय से इस घर में रखा गया था और इसलिए यह पुजारी अपने घर में इसे रखा गया है। उसका नाम उज्जा है। वह संदूक के बारे में चिंतित है। वे इसे लेवियों द्वारा उठाए गए डंडों पर ले जाने के बजाय एक गाड़ी पर ले जा रहे हैं, और जब संदूक स्थिर नहीं होता तो वह आगे बढ़ता है और उसे छूता है और भगवान उसे मार डालते हैं। और डेविड बहुत परेशान है, लेकिन यह एक चेतावनी थी कि हमें जो पवित्र है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि सफीरा आती है और यह भी नहीं जानती कि उसका पति कहाँ है? उसे उसकी जानकारी के बिना दफनाया गया है। खैर, लोगों को तुरंत दफना देने का रिवाज था, और यदि लोगों ने चर्च को संसाधनों का योगदान दिया था तो चर्च दफनाने के लिए जिम्मेदार था। उस समय अक्सर लोग अंत्येष्टि संघ में योगदान देते थे, इसलिए जब वे मरे तो कोई उनके दफनाने की देखभाल कर सके। यह एक तरह से बीमा पॉलिसी की तरह थी ताकि समूह इसकी देखभाल करे। आपने हर चीज का भुगतान एक साथ नहीं किया, आपने इसमें भुगतान किया। इसका उपयोग अन्य लोगों के लिए किया गया था और इसका उपयोग आपके लिए भी किया जाएगा। ऐसे में चर्च ने इसका ख्याल रखा था, और यह कहता है कि उन्होंने शव को लपेट दिया। इसका उद्देश्य मृतक के सम्मान की रक्षा करना था ताकि लोग चेहरा वगैरह न देखें। और फिर शव को नवयुवकों द्वारा ले जाया गया, जैसा लेविकस अध्याय 10 और श्लोक 4 में है। इसलिए इससे लेविकस जैसी ही भाषा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चर्च अंत्येष्टि प्रदान करने वाले एक परिवार के रूप में कार्य करता है। सफीरा अपने पति की तलाश में आती है। स्वाभाविक रूप से शास्त्रीय एथेंस की महिलाओं के विपरीत यहूदी महिलाओं को बाजार आदि में जाने की अनुमति थी, बशर्ते कि उनके बाल ढके हुए हों। अब ध्यान दें कि पुरातनता के कुछ अन्य मूल्यों के विपरीत अधिनियम की पुस्तक में महिलाओं और पुरुषों को ईश्वर द्वारा समान रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ मामलों में यह महिलाओं के लिए बुरी खबर है, जैसा कि इस मामले में है। इसके अलावा शाऊल यह कहता है कि उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से गिरफ्तार किया, जिसका अर्थ है कि वह विशेष रूप से उत्साही था क्योंकि कई लोग केवल पुरुषों को ही गिरफ्तार करते थे। हालांकि यह अधिनियम के कई अन्य हिस्सों में महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों ने विश्वास किया। ल्यूक को दोनों पर जोर देना पसंद है। वह नहीं चाहता कि आप इस बात को भूल जाए कि ईश्वर दोनों लिंगों की परवाह करता है। खैर, श्लोक 11 में लोगों पर बड़ा भय आता है। न्याय के चमत्कारों ने आम तौर पर इसे उत्पन्न किया। आपके पास यह संख्या अध्याय 16 में था। फैसले के बाद लोग दूर जाना चाहते हैं। वे स्वयं इसके निकट जाकर इसका सामना नहीं करना चाहते। 2 किंग्स अध्याय 1 में 50 के पहले 2 समूहों के बाद आग नीचे आती है और उन्हें भस्म कर देती है। 50 के अगले समूह का कमांडर आता है और एलिजा से विनती करता है, कृपया मुझ पर और मेरे लोगों पर आग न भेजें। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूं। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, फांसी का उद्देश्य भय को दूर करना था। हो सकता है कि यह हर संस्कृति में इस तरह से काम न करे, लेकिन प्राचीन इसराइल में इसे इसी तरह से काम करना था। 5:13 में अन्य लोग शामिल होने से डरते थे, यानी अनन्या और सफीरा की तरह नकली होने से, लेकिन श्लोक 14 से पता चलता है कि लंबे समय में कहीं अधिक धर्मांतरित हुए थे। छाया के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यह एक बुतपरस्त जादुई अवधारणा थी जो उस समय ज्ञात थी। यह भी एक यहूदी अवधारणा थी, लेकिन चाहे यह एक सच्ची अवधारणा थी या नहीं, यह कुछ ऐसी चीज थी जिसका उपयोग करने के लिए और कहीं भी उन लोगों को छूने के लिए भगवान तैयार थे जो पीटर के करीब थे। इसलिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहली चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया है। सदूकियों को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब उनका सम्मान दांव पर है क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि इन लोगों को दंडित किया जाएगा। और जिन लोगों को उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने न सुनी। वह पीटर और जॉन थे। अब 12 के पूरे समूह को उनके सामने दोषी ठहराया गया है। सदूकी लोगों में बहुत लोकप्रिय नहीं थे। फरीसी लोकप्रिय थे, और अब यह प्रेरितिक आंदोलन, यह ईसाई आंदोलन, यीशु के अनुयायी बहुत लोकप्रिय हैं, और वे सदूकियों से अधिक लोकप्रिय हैं। इसलिए सदूकियों को उम्मीद थी कि समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन अब वे अपने शब्दों के पीछे कार्रवाई करने और उन्हें अनुशासित करने के लिए मजबूर हैं। अन्यथा वे और भी कम लोकप्रिय हो जाएंगे क्योंकि भीड़ उनके खिलाफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रेरित हिंसा चाहते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन प्रेरित प्रचार कर रहे हैं, आप जानते हैं, यह गलत था। यीशु को फांसी देना गलत था। हालांकि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया वे गलत थे। तो 5:17 में यह मुख्य पुजारियों के इरादों ईर्ष्या का उल्लेख करता है। और कुछ ने इसके बारे में शिकायत की है और कहा है कि यह एक औपन्यासिक विशेषता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों ने इसके बारे में एक उपन्यासात्मक विशेषता के रूप में शिकायत की है, उन्होंने कभी भी प्राचीन इतिहास लेखन नहीं पढ़ा है। उस उद्देश्य का उल्लेख राजनीतिक इतिहासों और प्राचीन राजनीतिक इतिहासों में सर्वत्र मिलता है। वास्तव में यह संभवतः वास्तविकता में एक बहुत ही सामान्य उद्देश्य था क्योंकि प्राचीन शहरी भूमध्य सागरीय समाज पुरुष समाज सम्मान के लिए बहुत अधिक प्रतिद्वंद्विता में था। सम्मान को एक ऐसी चीज माना जाता था जो सीमित मात्रा में होती थी, इसलिए लोगों में इसके लिए प्रतिस्पर्धा होती थी और कभी कभी उनके राजनीतिक सहयोगी भी होते थे, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधी भी होते थे जिनका सम्मान वे अपने लिए करना पसंद करते थे। खैर, जाहिर तौर पर सदूकी नहीं चाहते कि प्रेरित लोकप्रिय हों। वे खुद के लिए लोकप्रियता चाहते हैं। तो उस अर्थ में ईर्ष्या का एक तत्व एक संभावित अनुमान है। ल्यूक यहां के सदूकियों को एक संप्रदाय नस्लवादी कहता है। अब उसका मतलब क्या है? खैर, जोसेफस उस भाषा का उपयोग सदूकियों, फरीसियों और एसेंस के लिए भी करता है। उनके एक लेख में यह चौथे समूह कट्टरपंथियों पर भी लागू होता है जो क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन इस मामले में और बाद में नाजरीन को एक संप्रदाय कहा जाता है। यीशु के अनुयायियों को सदूकियों या सदूकियों का समर्थन करने वालों द्वारा एक संप्रदाय कहा जाता है। जब जोसेफस उस भाषा का उपयोग करता है तो यह वह भाषा है जिसका उपयोग ग्रीक दार्शनिक विद्यालयों के लिए किया जाता था। यह एक विशेष विचारधारा है, एक विशेष आंदोलन है। खैर, श्लोक 18 में उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मुकदमे तक जेलों को हिरासत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जेलें हमेशा अच्छी जगह नहीं होती। बहुत सी जेलों में एक ही कमरे में बहुत सारे लोगों को ठूंस दिया जाता है। आपके पास हमेशा शौचालय की सुविधा नहीं थी, इसलिए आप जानते हैं लोग ऐसा करते होंगे। तो यह बहुत स्वच्छतापूर्ण नहीं था, बहुत स्वास्थ्यवर्धक था। यह भूमध्य सागरीय दुनिया की कुछ अन्य जेलों से बेहतर हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसका उपयोग आम तौर पर मुकदमे तक हिरासत में रखने के लिए किया जाता था। इसे आम तौर पर सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, हालांकि मुकदमे में इतना लंबा समय लग सकता था। कभी कभी यह एक सजा थी, लेकिन कभी कभी कुछ टिप्पणीकारों के कहने के विपरीत वास्तव में इसका उपयोग सजा के रूप में किया जाता था। यहां इसका उपयोग वैसे ही किया गया जैसे आम तौर पर किया जाता था, हालांकि परीक्षण तक हिरासत के रूप में। अगले श्लोक में एक देवदूत उन्हें बाहर जाने देता है। अब यह कुछ ऐसा था जिसमें प्राचीन श्रोताओं को बहुत दिलचस्पी रही होगी। यूनानियों के पास जेल से भागने की चमत्कारी कहानियां थीं। यूरिपिड्स में वापस जाकर यूरिपिड्स ने एक कहानी सुनाई कि कैसे राजा पेंथियस ने डायोनिसस के इन अनुयायियों के इस नए आंदोलन पर भरोसा नहीं किया, जिनमें से कई महिलाएं थीं जो उन्माद में चली जाएंगी। उन्हें मैनार्ड कहा जाता था। उनकी अपनी मां एगेव इस आंदोलन की सदस्य थीं, लेकिन उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की। उसने उन्हें जेल में डाल दिया। डायोनिसस ने उन्हें बाहर जाने दिया, और अंततः राजा पेंथियस का प्रतिशोध उस दुष्ट राजा पर पड़ता है जो भगवान का विरोध कर रहा है, और वह टुकड़े टुकड़े हो गया है। और उसकी मां और अन्य उन्मादी मैनार्ड जो भगवान के पास थे उसके कांपते हुए मांस को खा जाते हैं। खैर, वह सिर्फ एक ग्रीक कहानी नहीं थी। मूसा और आर्टेपनिस के बारे में एक पूर्व ईसाई कहानी भी थी। इसलिए यहूदी लोगों ने पहले ही इस मूल भाव को अपना लिया था। लेकिन लोगों को कैद से छुड़ाने के मामले में आपके पास इससे भी पहले के स्रोत हैं जहां आप पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए भगवान ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाया। किसी भी मामले में यह खाता कोई पुराना मिथक नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो एक पीढ़ी के भीतर दोहराया जा रहा है। लेकिन दर्शक, विशेषकर ल्यूक के दर्शक जो प्रवासी भारतीयों में रहते हैं, इनमें से कुछ कहानियों से परिचित होंगे। भले ही वे यहूदी थे, फिर भी इन कहानियों को यहूदी लोगों द्वारा यहूदी रूप में अपनाया गया था। तो यह ऐसा है जैसे ओह, यहां अधिकारी भगवान का विरोध कर रहे हैं और भगवान अपने सेवकों को बचा रहे हैं। खैर, इसके बाद क्या होने वाला है? तुरंत वे जाते हैं और मंदिर के दरबार में उपदेश देते हैं। आधी रात को मंदिर के कपाट दोबारा खोले गए। सूर्यास्त के समय उन्हें बंद कर दिया गया, लेकिन आधी रात को वे फिर से खुल गए। लोग भोर होने पर ही लौटे, लेकिन कानून के अनुसार सुनवाई उस दिन के लिए निर्धारित की जानी थी। इसलिए उन्हें सुनवाई के लिए लाए जाने से पहले या उन्हें सुनवाई के लिए लाए जाने से पहले रिहा कर दिया जाता है, और सुबह होने से पहले जैसे ही लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं, उन्हें मंदिर के दरबार में उपदेश देने के लिए भेज दिया जाता है। भेंट, और वे उपदेश देने लगते हैं। अब यह बहुत साहसिक है। आप जानते हैं कि आपको अभी उपदेश देने के लिए गिरफ्तार किया गया है, और आप क्या करेंगे? आप कुछ और प्रचार करें। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि अधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि वे यीशु के अधिकार के प्रति उत्तर देते हैं। उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है कि वे मारे भी जाएं, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, और वे जानते हैं कि इन अधिकारियों के पास जीवन और मृत्यु की अंतिम शक्ति नहीं है। ईश्वर अभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, चाहे इस पीढ़ी में या जैसा कि मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा, या अंत देरसबेर ईश्वर के उद्देश्य पूरे होंगे। खैर, 522 से 526 में अधिकारियों के सामने पेश करने के लिए गार्डों को जेल से लाने के लिए भेजा जाता है, और वे क्या पाते हैं? लेवी रक्षक सामने आते हैं, और उनके पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ये लोग जेल से कैसे बाहर आए हैं। यह सुरक्षित था, और फिर भी वे वहां नहीं हैं। और इसलिए श्लोक 28 में उन्हें अधिकारियों के सामने ले जाया गया है, और आरोप नगरपालिका अभिजात वर्ग के खिलाफ अशांति भड़काने का है। इसके लिए मौत की सजा हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रेरित इसलिए सुलहकर्ता बन जाएंगे। खैर, यीशु के अनुयायी कुछ परिस्थितियों में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बोलना जानते थे, लेकिन यह उन परिस्थितियों में से एक नहीं थी। प्रेरित उनका सामना करते हैं, क्योंकि ये अधिकारी ही गलत हैं, और वे साहसपूर्वक बोलते हैं। और वे कहते हैं, आप जानते हैं, हमें लोगों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। खैर, यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसा सुकरात ने कहा था। यह भी वही है जो भविष्यवक्ताओं ने किया था, और इससे अधिकारी बहुत खुश नहीं होंगे, क्योंकि अधिकारियों ने सुकरात को मार डाला था, और उसके बाद हर पीढ़ी के लिए लोग सुकरात को नायक के रूप में और अधिकारियों को बुरे लोगों के रूप में देखते हैं। इसलिए इससे अधिकारियों को बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा, और निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं था, क्योंकि पीटर, जो इस समय एपोस्टोलिक बैंड के प्रवक्ता हैं, संभवतः ऐसा महसूस करते हैं कि वह भविष्यवक्ताओं की बात दोहरा रहे हैं, अधिकारियों को भी चुनौती दे रहे हैं, और वह पवित्र आत्मा की बात करता है जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरे शब्दों में, हम आपकी अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, तुम्हें नहीं। तुम परमेश्वर की अवज्ञा कर रहे हो। हम भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। ईश्वर सर्वोच्च प्राधिकारी है, और हम अंततः उसे ही उत्तर देते हैं। और यदि तुम में थोड़ी भी समझ होती तो तुम्हें भी होती। यह ऐसा नहीं कहता है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। श्लोक 33 से 42। महासभा के नेता परेशान हैं। वे उसे मरवाने को तैयार हैं। वैसे सैनहेड्रिन, यह ग्रीक शब्द सुनेड्रियन है, और इसका उपयोग सीनेट की तरह नगरपालिका विधानसभा के लिए किया जाता था। इसका उपयोग छोटी नगरपालिका विधानसभाओं के लिए किया जा सकता है। संभवतः जेरूसलम नगर सभा में औसतन लगभग 70 लोग थे। ये यरूशलेम में अभिजात वर्ग के प्रमुख सदस्य थे। अब बाद में रब्बीनिक सूत्रों का कहना है कि 71 थे, लेकिन यह शायद केवल एक औसत संख्या है। लेकिन किसी भी स्थिति में वे उन्हें मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी एक फ्रीसी उदारवादी उनके समर्थन में आता है और कहता है, उन्हें बाहर निकालो। जब तक प्रेरित जवाब दे रहे हैं, सदूकी पागल बने रहेंगे और साथ ही सदूकियों का सम्मान भी दांव पर है। दयालु होने से उन्हें अधिक सम्मान मिल सकता है यदि प्रेरितों ने उन्हें एक फरीसी द्वारा मनाए जाने के बारे में सुना हो। तो प्रेरितों को बाहर निकाला गया और हम जानते हैं कि प्रमुख पुरोहित परिवारों ने बल प्रयोग किया था। इसकी शिकायत अन्य स्रोतों में की गई है। फरीसियों द्वारा इसकी शिकायत की गई है कि वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्लबों का उपयोग करते थे और लोगों को पीटते थे इत्यादि। लेकिन गमलीएल प्रथम सौमय फरीसी शिक्षक हिलेल का सबसे प्रमुख शिष्य था। यीशु के समय में फरीसियों के दो मुख्य विद्यालय थे, हिलेल का विद्यालय और शम्माई का विद्यालय। यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय के समय तक हिलेल और शम्माई की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु गमलीएल एक प्रभावशाली फरीसी था। वह अरिमथिया के जोसेफ को जानता होगा जो परमेश्वर के राज्य की तलाश में था और इसलिए शायद एक फरीसी भी था। महासभा के भीतर फरीसी अल्पसंख्यक थे, उनके पास सदूकियों जितनी राजनीतिक शक्ति नहीं थी। फरीसियों ने सैलोम अलेक्जेंड्रा के अधीन एक बार सत्ता संभाली थी, लेकिन वह कुछ शताब्दियों पहले थी। फरीसियों का हेरोदेस महान के साथ बेहतर तालमेल हो गया था, जिनके साथ फरीसियों की हमेशा नहीं बनती थी, खासकर जब उन्होंने मंदिर में उसके सुनहरे ईगल को उतारने की कोशिश की दो फरीसी शिक्षकों के 50 शिष्यों ने, और इसलिए उसने उन्हें मार डाला। तो फरीसी सबसे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन कुछ फरीसी थे और गमलीएल निश्चित रूप से महासभा में था। जोसिफस से हमें बाद में पता चला कि उसका बेटा गमलीएल का पुत्र साइमन सैनहेड्रिन का एक प्रमुख सदस्य था। उनका बेटा गमलीएल द्वितीय रब्बी परंपरा की शुरुआती परतों में अपने समय के शुरुआती रब्बी आंदोलन के सबसे आधिकारिक नेता के रूप में दिखाई देता है। तो वैसे भी गमलीएल एक प्रमुख व्यक्ति है, संभवतः सभी फरीसियों में सबसे प्रभावशाली। यदि हम उसके पुत्र साइमन की भूमिका से समझ सकें, तो वह यरूशलेम का एक कुलीन व्यक्ति भी था, तो वह शक्तिशाली था। बाद में रब्बियों ने उनकी धर्मप्रायणता और विद्वता की प्रशंसा की। फरीसियों के पास बहुत कम राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन वे सदूकियों की तुलना में बहुत अधिक उदार थे, जो निश्चित रूप से सुविधाजनक था, क्योंकि रोमन कानून उन्हें किसी भी तरह से लोगों को फांसी देने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन अरे, रोमन गवर्नर केवल त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यरूशलेम आते थे, तो रोमन गवर्नर वैसे भी यहां नहीं था। लेकिन फिर भी आपको अवैध लिंचिंग से कोई लाभ नहीं होगा। खबर यह थी कि सेंट एंटोनिया के किले में टेंपल माउंट में रोम के सैनिकों का एक समूह था। इसलिए किसी भी स्थिति में जहां महासभा की बैठक हो रही थी, वहां से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन फरीसियों का दृष्टिकोण यह था कि हमें चिंता है कि लोग टोरा का पालन करें। इसलिए यदि ईसाई टोरा का पालन कर रहे हैं, तो उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। बाद में फरीसियों का भी यही दृष्टिकोण था। प्रेरितों 15:05 के अनुसार, आपके पास कुछ फरीसी हैं जो चर्च के सदस्य हैं, हालांकि उनकी कुछ परंपराएं हैं जो चर्च के कुछ अन्य सदस्यों के कुछ अन्य विचारों के अनुरूप नहीं हैं। और 60 की शुरुआत में, जब यीशु के भाई जेम्स को एक महायाजक द्वारा मार डाला गया था, उस समय कुछ लोग जो कानून में सावधानी बरतते थे, जोसेफस कहते हैं, जो एक वाक्यांश है जिसे वह वस्तुतः हमेशा उपयोग करता है, फरीसी। कुछ लोग जो कानून के बारे में बहुत सतर्क थे, शायद फरीसियों ने, जब नया रोमन गवर्नर आया तो महायाजक ने जो किया उसके बारे में शिकायत की, और महायाजक को उसके कारण पद से हटा दिया गया था। इसलिए सदूकियों की तुलना में फरीसियों का यहूदी ईसाइयों के साथ वास्तव में बेहतर संबंध था। वे दोनों लोकलुभावन संप्रदाय फरीसी और यहूदी ईसाई थे। और फरीसी अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे और वे कानून का पालन करने वाले लोगों को पसंद करते थे। और यहूदी ईसाई बहुत पवित्र थे। वे यरूशलेम में कानून का पालन कर रहे थे, विशेषकर जेम्स के नेतृत्व में गैलिलियन मछुआरे पीटर के नेतृत्व से भी अधिक। तो वह उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो उन्हें फांसी न दें। और वह कुछ उदाहरण देता है जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में यीशु को भी सही ढंग से नहीं समझ सका है। वह यीशु को एक मसीहा आंदोलन के नेता के रूप में समझता है, लेकिन वह उसे क्रांतिकारियों के साथ वर्गीकृत करता है, जो बाद में जोसिफस ने भी नहीं किया जब वह पुरातनता 18 में यीशु के बारे में बात करता है। वह दो क्रांतिकारियों थ्यूडस और जुडास द गैलिलियन की तुलना करता है। अब जहां तक हम जोसेफस से इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि थ्यूडस ने रोम के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया या थ्यूडस ने वर्ष 44 के आसपास एक मसीहा नेता बनने का काम किया। इसके साथ समस्या यह है कि यह गैमलियल के भाषण के लगभग 10 साल बाद है। खैर, इसके अलग अलग समाधान हैं। एक संभावना यह है कि जोसेफस गलत है। एक संभावना यह है कि ल्यूक गलत है। चूंकि जोसेफस को ल्यूक की तुलना में क्रांतिकारियों की अधिक परवाह थी और जोसेफस ने ल्यूक की तुलना में अपना अधिक समय यहूदिया में बिताया, इसलिए अधिक विद्वान सोचते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां ल्यूक गलत हो सकता है। ये सबसे रूढ़िवादी विद्वान नहीं है। सबसे रूढ़िवादी विद्वानों का कहना है कि संभवतः इसका समाधान यह है कि थ्यूडस नाम के एक से अधिक व्यक्ति थे, और कभी कभी वे कहते हैं कि यह एक सामान्य नाम था। तर्क के साथ समस्या यह है कि यह कोई सामान्य नाम नहीं था। थ्यूडस कोई सामान्य नाम नहीं था, लेकिन वे कहते हैं, ठीक है, शायद यह थडियस या उसके जैसा कुछ का संक्षिप्त रूप है। यह संभव है। अब जुडास एक सामान्य नाम था, दूसरा व्यक्ति, लेकिन थ्यूडस नहीं। हालांकि एक प्राचीन इतिहासकार के रूप में ल्यूक के पास उस काल के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के नाम लिखने का अधिकार होगा। जब यह बात कही गई तो प्रेरित वहां नहीं थे, लेकिन निःसंदेह यह बात उन तक वापस पहुंच गई। और आप इस तथ्य से बता सकते हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया था कि गमलियल ने उनकी ओर से कुछ कहा था क्योंकि वे अन्यथा मारे जाने वाले थे। लेकिन एक गवाह है जो जानता होगा कि गमलियल ने क्या कहा, जो ल्यूक के लिए बहुत अच्छा स्रोत था। उसका नाम पॉल है क्योंकि पॉल गमलियल का शिष्य था। उसे पता होगा कि गमलियल ने क्या कहा, हालांकि उस समय वह स्पष्ट रूप से उससे सहमत नहीं था। लेकिन जो भी मामला हो, भले ही सटीक विवरण याद किया गया हो, बजाय इसके कि ये सिर्फ क्रांतिकारी थे, देश के बाहर के अधिकांश लोगों ने इनमें से किसी भी क्रांतिकारी के बारे में नहीं सुना था। इसलिए ल्यूक को यह उचित लगा कि वह इस विचार को संप्रेषित करने के लिए सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम बताए। फिर यह कुछ ऐसा है जो प्राचीन इतिहासकारों के भाषण लिखने के तरीके की विशेषता थी। आप इस शैली पर कोई बाद की शैली नहीं थोप सकते जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए कभी कभी लोग सबूत गढ़ने की कोशिश में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जैसे थ्यूडस एक सामान्य नाम था। और कभी कभी लोग दूसरी दिशा में बहुत दूर चले जाते हैं। वे इसे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, ल्यूक एक अच्छा इतिहासकार नहीं था, जो वे आम तौर पर टैसिटस के बारे में नहीं कहते, भले ही आपके पास टैसिटस के भाषणों के साथ भी ऐसी चीजें हों। लेकिन किसी भी मामले में जोसेफस का कहना है कि थ्यूडस एक जादूगर था, जो उन लोगों द्वारा एक चमत्कार कार्यकर्ता को दी गई एक बहुत ही नकारात्मक उपाधि थी जो उस व्यक्ति से सहमत नहीं थे। यह वही शब्द है जो मैगी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इसे उन लोगों पर लागू किया जाता था जो मैगी नहीं थे, तो इसका उपयोग आम तौर पर एक जादूगर के लिए बहुत नकारात्मक रूप से किया जाता था, क्योंकि थ्यूडस ने जॉर्डन को छोड़ने का वादा किया था। वह एक नए जोशुआ की तरह बनने जा रहा था। ऐसा नहीं हुआ। थ्यूडस के गवर्नर ने, जो थ्यूडस के समय का गवर्नर था, थ्यूडस को गिरफ्तार कर लिया और उसका सिर काट दिया। गलील का यहूदा, पद 37। गलील के यहूदा ने छठे वर्ष के कर विद्रोह का नेतृत्व किया। अब उनके बेटे बाद में वर्ष 66 और उसके बाद रोम के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन गलील के यहूदा ने छठे वर्ष के कर विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे यहूदिया के गवर्नर के लिए परेशानी खड़ी हो गई। इसका कारण यह भी था क्योंकि सेफोरिस ने सेफोरिस के विनाश के लिए विद्रोह किया था, जो नाजारेत से केवल 4 मील की पैदल दूरी पर था। इसीलिए सेफोरिस के आसपास बढ़ी की बहुत मांग थी, क्योंकि यीशु के बचपन के दौरान इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। तो उसके पिता एक बढ़ी होंगे। वह एक कुआ होगा। यहूदा को सादक नाम के एक फरीसी ने मदद की थी। इसलिए कुछ फरीसियों को वास्तव में उन कुछ लोगों के प्रति कुछ सहानुभूति थी जो सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। हालांकि सैनहेड्रिन विशेष रूप से कुलीन पुरोहितों द्वारा नियंत्रित रोमन शासन में निहित स्वार्थ रखता था। यह वे लोग नहीं थे जिन्होंने उन्हें बनाए रखा। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा। यह लोगों और रोम के बीच शांति बनाए रख रहा था। उन्हें लोगों की परवाह थी। जाहिरा तौर पर वे नहीं चाहते थे कि रोमन उनके लोगों को नष्ट कर दें, लेकिन रोमन शासन द्वारा प्रदान की गई स्थिरता से उन्हें आर्थिक और अन्य तरीकों से सम्मान आदि का लाभ भी हुआ। उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन पसंद नहीं थे। खैर, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना वह इन दो क्रांतिकारियों से करता है। वह यीशु को एक क्रांतिकारी की तरह वर्गीकृत कर रहा है। इन्हें निष्पादित किया गया। यीशु को फांसी दे दी गई। उनकी गतिविधियां खत्म हो गईं। हो सकता है कि यीशु का आंदोलन खत्म हो जाए अगर यह ईश्वर का नहीं है, लेकिन यह खत्म नहीं हो रहा है। शायद उसकी गति भगवान की है और यही वह लाता है। श्लोक 38 और 39। खैर, गमलियेल अच्छी तरह से शिक्षित था। वास्तव में उनका परिवार न केवल हिब्रू धर्म ग्रंथों को पढ़ाने के लिए बल्कि ग्रीक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी जाना जाता था, और सदूकियों ने यूनानी शिक्षा प्राप्त की होगी। खैर, प्रेरितों को जाहिर तौर पर चमत्कारिक ढंग से जेल से रिहा कर दिया गया था, और इसलिए वे कहते हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसा न हो कि हम ईश्वर के खिलाफ लड़ते हुए पाए जाएं। थियोमेकोस। अब यह सटीक भाषा थी जिसका उपयोग यूरिपिड्स में किया गया था, और यूरिपिड्स के बाद के कार्यों में पेंटियस इस राजा के रूप में क्या कर रहा था जो भगवान के खिलाफ डायोनिसस के खिलाफ लड़ रहा था। पेंटियस जो कर रहा था उसके लिए एक और अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था। यह बकरों पर लात मारने जैसा था, जैसा कि बाद में यीशु ने किया, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 26 में पॉल ने बताया कैसे यीशु ने दमिश्क की सड़क पर पॉल का सामना किया, गमलियेल का अपना शिष्य जिसने ऐसा किया था। इस मुद्दे पर अपने शिक्षक गमालियेल की बात भी न सुने। भगवान के खिलाफ लड़ने का खतरा। अब वह केवल राजनीतिक तरीके से यीशु को गलत समझता है, लेकिन वह कम से कम इस संभावना की अनुमति देता है कि इसमें ईश्वर हो सकता है। यदि ईश्वर इसमें नहीं है तो आंदोलन अंततः समाप्त हो जाएगा, जैसे थ्यूडस और जुडास के आंदोलन बहुत तेजी से समाप्त हो गए। तो श्लोक 40 में इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह से छूट जाते हैं, क्योंकि पुजारी का सम्मान दांव पर है, उच्च स्तर के पुजारी का सम्मान दांव पर है। तो पद 40 में उन्हें पीटा जाता है, लेकिन उन्हें यहूदी कानून के अनुसार पीटा जाता है। सदूकी तोरा का पालन करना चाहते थे। और इसलिए उन्हें 39 कोड़े तक मारे जाते हैं, जो बहुत दर्दनाक होगा। लेकिन यह रोमन पिटाई की तरह नहीं है, जहां वे आपको तब तक मारते हैं जब तक वे थक नहीं जाते, और कभी कभी आपकी हड्डियां दिखाई देंगी। तो उन्हें पीटा जाता है और वे अपने रास्ते चले जाते हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि वे सुंदर होंगे। इन पिटाई से बहुत दर्द होगा। लोगों के साथ अपना विश्वास साझा करने के लिए मुझे पहले भी पीटा गया है, और मुझे याद है कि एक बार मेरे सिर को जमीन पर पटक दिया गया था। वास्तव में एक से अधिक बार मेरे सिर को जमीन पर पटक दिया गया था। मेरे बाल खींचे जा रहे थे। यही कारण है कि अब मुझ में इसकी कुछ कमी है। मैं फिर बड़ा हो गया, लेकिन किसी भी मामले में मुझे एक समय याद है जब यह बहुत दर्दनाक था। मैं फिर भी प्रचार करता रहा, लेकिन दूसरी बार मुझे नहीं पता कि भगवान ने मेरी एड्रेनालाइन का इस्तेमाल किया या क्या किया, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। चूंकि मेरे सिर को जमीन पर पटक दिया जा रहा था, मेरे बाल खींचे जा रहे थे, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर एक अन्य अवसर पर मुझे किसी के द्वारा पीटा जा रहा था। मेरे जाने के बाद मेरी कुछ काली आंखें हो गईं और मेरे चेहरे पर थोड़ा सा खून आ गया, लेकिन यह उतना गंभीर नहीं था जितना कि था, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ। लेकिन उन्होंने जो किया वह उल्लेखनीय है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे कि वे यीशु के नाम के लिए कष्ट उठाने के योग्य समझे गए हैं। अब यहूदी साहित्य में जब किसी के नाम के लिए कष्ट उठाना अच्छी बात है, तो यह ईश्वर के नाम के लिए कष्ट उठाना था। तो यहां यीशु को दिव्य के रूप में चित्रित किया जा रहा है। यह पूरा खंड यीशु के नाम के बारे में बात करता है। उसके नाम से पुकारने पर बचत होगी। खैर, उनके नाम के लिए कष्ट सहना भी सम्मान की बात थी, और यीशु ने ल्यूक अध्याय 6 में यह वादा किया था, यदि तुम मेरे कारण सताए गए हो तो खुशी से उछल पड़ो। तुमसे पहले जो भविष्यद्वक्ता थे उनके साथ भी यही हुआ, और फिर यह कहता है कि उन्होंने जारी रखा, वे रुके नहीं, उन्होंने पढ़ाना और उपदेश देना जारी रखा। अब कभी कभी काम करने के अन्य तरीके भी होते हैं। यीशु ने मत्ती 10:23 में कहा था, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे नगर में भाग जाना। और हम पॉल को कुछ सेटिंग्स में ऐसा करते हुए देखते हैं। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस स्थिति में वे जानते थे कि भगवान ने उन्हें यरूशलेम में बुलाया है और वे यरूशलेम में सेवा करते रहेंगे। और वे भाषा पढ़ा रहे थे जिसका मुख्य संबंध शिक्षा से है, और वे उपदेश दे रहे थे और बचाने वाले सुसमाचार का प्रचार करते रहे। ये शब्द वास्तव में शब्दार्थ बल में ओवरलैप होते हैं, लेकिन यही उनके बीच प्राथमिक अंतर है। कभी कभी आज कुछ हलकों में हम उपदेश देने को न्यायसंगत मानते हैं। यदि आप शिक्षण के विपरीत उपदेश दे रहे हैं, तो आपको उत्साहित होना होगा और चिल्लाना होगा। मैं ऐसे ही मंडलियों में रहा हूं। मुझे लोगों के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और कभी कभी जब मैं इस बारे में उत्साहित हो जाता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो कभी कभी मैं चिल्लाने के करीब भी आ जाता हूं, जैसा कि मैं तब कर रहा था जब मैं अधिनियम 2 के बारे में बात कर रहा था। लेकिन इतना कहने के बाद, यह दोनों के बीच कोई बाइबल अंतर नहीं है। शिक्षण में मुख्य रूप से निर्देश और बचाने वाले सुसमाचार पर उपदेश पर जोर दिया गया है, और उनके अर्थ वास्तव में ओवरलैप होते हैं। लेकिन पारूसिया होने का यह विचार जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, अब वह साहस है, साहसपूर्वक बोलने के लिए तैयार होना। हालांकि कभी कभी मंडली के साथ ऐसा करना उन लोगों की तुलना में बहुत आसान होता है जो आपको पीटने के लिए तैयार हो रहे हों। फिर यह आपकी मंडली पर निर्भर हो सकता है, क्योंकि मेरी मंडली ने मुझे कभी नहीं हराया, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ कठिन परिस्थितियों के बारे में पता है। खैर, उत्पीड़न के अलावा सब कुछ अच्छा चल रहा है। चर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब हम चर्च के भीतर ही विभाजन की स्थिति में आने वाले हैं। अधिनियम 6:1-7 में हम 7 दान वितरकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शिकायत करने वाले अल्पसंख्यकों का आम तौर पर दमन किया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे सदूकियों ने प्रेरितों के साथ किया था। लेकिन यहाँ प्रेरित ऐसा नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक समूह वे बोलते हैं, वे कहते हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमें यह नहीं बताया गया कि क्या यह सच था या क्या उन्हें ऐसा सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि उनकी संख्या के कारण उन्हें हाशिए पर रखा गया था। यह सच हो सकता है। प्रेरितों के पास शायद कुछ पूर्वाग्रह रहे होंगे जिन्हें उन्होंने नहीं पहचाना। हो सकता है यह झूठ हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर चीज के बारे में हमेशा सही है। याद रखें, गलातियों के अध्याय 2 में पॉल को पीटर को चुनौती देनी है, इसलिए लोगों की बात सुनना मददगार है। अगर उन्हें शिकायत है तो उन्हें बंद न करें बल्कि सुनें। अब इस मामले में वे बहुत सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। विधवाएं सबसे अधिक शक्तिहीन समूह थीं। विधवाएं और अनाथ प्राचीन काल में और यहूदी समाज में सबसे शक्तिहीन समूह थे। आज कुछ ऐसे समाज हैं जहां पति के रिश्तेदार विधवा के घर पर कब्जा कर लेते हैं और विधवा और बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। और मुझे आशा है कि यदि आप उन समाजों में से एक में हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ प्रचार करेंगे ताकि आपकी मंडली के सदस्य यदि सत्ता में हैं या ऐसे पदों पर हैं जहां वे लोगों की संपत्ति जब्त कर सकते हैं, तो वे इस तरह से कार्य नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी मामले में यहूदी समाज में यह बहुत महत्वपूर्ण था। धर्मग्रंथ ने बार बार दोहराया कि परमेश्वर विधवा और अनाथों का रक्षक है और तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। तुम्हें विधवाओं और अनाथों की रक्षा करनी चाहिए। महिलाएं कभी कभी उन चीजों से भी बच निकलती हैं जिनसे पुरुष बच नहीं पाते। कभी कभी वे अदालत में चिल्लाते थे। यह आम तौर पर पूरी तरह से पुरुष क्षेत्र था, लेकिन न्यायाधीश कभी कभी किसी महिला की बात सुनता था, विशेष रूप से एक शक्तिहीन महिला की, विशेष रूप से एक शक्तिहीन बुजुर्ग महिला की, जिसे मां के समान माना जा सकता था। हम इसे कभी कभी पुराने नियम में देखते हैं, जहां योआब डेविड को किसी बात के लिए राजी करना चाहता है, लेकिन खुद इससे बच नहीं पाता। इसलिए उसने अंदर जाकर डेविड से बात करने के लिए एक बुद्धिमान महिला को काम पर रखा। या योआब स्वयं एक अन्य मामले में एक बुद्धिमान महिला की बात सुनता है। शहर पर हमला करने के बजाय बुद्धिमान महिला शहर की ओर से बोलती है। आपके पास यह ल्यूक अध्याय 18 में भी है, जहां आपके पास यह अन्यायी न्यायाधीश है। वह विधवा की बात भी नहीं मानेगा, लेकिन अंततः क्योंकि वह उसे परेशान करती रहती है, वह सुनता है। लेकिन आम तौर पर विधवाएं बिना बंद किए ही काम से बच सकती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। और इस मामले में समस्या यह नहीं है कि वे स्वयं विधवाएं हैं, क्योंकि चर्च विधवाओं की देखभाल कर रहा है। वहां एक भोजन वितरण कार्यक्रम है और वे गरीबों की देखभाल कर रहे हैं। इस मामले में समस्या यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से चर्च के भीतर एक अल्पसंख्यक समूह की विधवाएं हैं। वे हेलेनिस्ट हैं। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बीच के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी वे अल्पसंख्यक यदि वे आत्मा द्वारा सशक्त होते हैं तो शायद चर्च के भविष्य के लिए पुल बन सकते हैं। अब वह अच्छा हो सकता है या वह बुरा हो सकता है, क्योंकि चर्च का भविष्य उन लोगों पर निर्भर हो सकता है जो अच्छे या बुरे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त लोग हैं तो यह अच्छी बात है। और मेरा मतलब है, इस बिंदु पर उनके पास चर्च में अन्य जाति नहीं है। लेकिन यह अल्पसंख्यक समूह जो सांस्कृतिक रूप से प्रेरितों की तुलना में ग्रीक दुनिया से अधिक परिचित है, यह अल्पसंख्यक समूह भविष्य के लिए अन्य जातियों तक पहुंचने के लिए एक पुल बनने जा रहा है। प्रेरितों के पास यह जानने का कोई कारण नहीं है। हम इसे केवल पूर्व निरीक्षण में देखते हैं, जिस तरह से अधिनियमों की पुस्तक में चीजें विकसित हुई। लेकिन हम अपने बीच के उन समूहों के बारे में सोच सकते हैं जो अल्पसंख्यक हैं। मेरा मतलब है, हमारे चर्च में उनके पास ताकत नहीं है, लेकिन वे भविष्य के लिए एक पुल हैं। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें प्रभु के तरीकों में बड़ा करें और उन्हें समझने में मदद करें, और उनके पास अपनी पीढ़ी तक पहुंचने की अंतर्दृष्टि हो सकती है जो हमारे पास नहीं है, और हम उन बिंदुओं पर उनसे सीख सकते हैं जब तक कि वे उस पीढ़ी के मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं जो सुसमाचार के विपरीत हैं। लेकिन फिर भी वहां देना और लेना है जहां हम सीख सकते हैं। तो अध्याय 6 और श्लोक 1 में ये विधवाएं हैं। पुराने नियम में विधवाओं की देखभाल पर जोर दिया गया था। यदि विधवाएं परिवार विहीन थीं, तो उनके पास सहायता के अन्य साधनों का अभाव था। हम थोड़ी और बात करेंगे। दरअसल आगे बढ़ने से पहले मैं विधवाओं के बारे में थोड़ा और बता दूं। ल्यूक को विधवाओं में विशेष रुचि है। आपके पास साइमन है जो ल्यूक अध्याय 2 में मंदिर में एक भविष्यवक्ता है। आपके पास अन्ना भविष्यवक्ता भी है जो लंबे समय से विधवा है। आपके पास यह अन्यायी न्यायाधीश और ल्यूक अध्याय 18 में चिल्लाने वाली विधवा है। आपके पास फरीसी हैं जो विधवाओं पर अत्याचार करते हैं। यीशु उस बारे में बात करते हैं। ल्यूक अध्याय 21 में यीशु द्वारा विधवाओं पर अत्याचार करने के खिलाफ चेतावनी देने के तुरंत बाद, आपके पास यह गरीब विधवा भी है जो इन दो तांबे के सिक्कों को रखती है। अन्य लोग सोच सकते हैं कि यह बहुत कम है, लेकिन यीशु कहते हैं कि उसने किसी से भी अधिक दिया है। उसने वह सब कुछ दे दिया है जो उसके पास है। फिर आपके पास यहाँ विधवाओं की देखभाल करने वाला चर्च है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में आपके पास तबीथा है जो विधवाओं की देखभाल कर रही है। इसलिए इन हाशिए पर पड़े लोगों के लिए विशेष चिंता है जो समाज के भीतर शक्तिहीन हैं। अब हमारे समाज में जो लोग शक्तिहीन हैं, वे हमेशा विधवा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की मदद करने की जरूरत है जिन्हें मदद की जरूरत है। हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है। हमें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी यदि आप एक प्रमुख संस्कृति का हिस्सा हैं या आप सत्ता की स्थिति में हैं, तो आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं। निस्संदेह वे जानते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं और वे देख सकते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अल्पसंख्यक संस्कृति के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है और हमें सुनने की जरूरत है, और यहाँ शिष्यों को यही करना था। इसलिए यहाँ की विशेष सांस्कृतिक गतिशीलता को देखते हुए, ये हेलेनिस्टों के थे। इसका मतलब वे लोग थे जिन्होंने यूनानी संस्कृति का कुछ हिस्सा आत्मसात कर लिया था। इस वाक्यांश का उपयोग मैकाबीन साहित्य और अन्य जगहों पर उन यहूदियों के लिए किया जाता है जिन्होंने ग्रीक संस्कृति को आत्मसात किया था। यहाँ इसका अर्थ संभवतः विदेशी यहूदी बनाम यहूदी है। हम पहले ही प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उनसे मिल चुके हैं। हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 में जोसेफ बरनबास से मिले, जिन्हें प्रेरित पसंद करते थे। यरूशलेम में इतना बड़ा विदेशी यहूदी समुदाय क्यों था? खैर, यरूशलेम यहूदी दुनिया का दिल था, न कि सिर्फ यहूदियों के लिए। यह प्राचीन दुनिया भर के यहूदी लोगों के लिए यहूदी दुनिया का दिल था। कुछ लोगों का अनुमान है कि 80% यहूदी लोग यहूदिया और गलील के बाहर रहते थे। वे या तो पूर्व में पार्थिया में रहते थे या वे रोमन साम्राज्य में रहते थे, और इरेत इज़राइल में दफनाया जाना पुण्य माना जाता था। हमारे पास बाद के रब्बियों से इस बारे में कई रिपोर्टें हैं। आप सोच सकते हैं कि यह इजरायली पर्यटन उद्योग था जिसने इस संदेश को प्रायोजित किया था, लेकिन किसी भी स्थिति में पवित्र भूमि में दफनाया जाना पुण्य माना जाता था। इतने सारे विदेशी यहूदी पर्याप्त बचत करने के बाद वहां चले गए और वे अपने अंतिम दिन वहीं बिताएंगे। खैर, जब पुरुष मर गए तो उन्होंने विधवाएं छोड़ दी, और इसलिए आपके पास विदेशी विधवाओं की अनुपातहीन संख्या थी। हर कोई बूढ़ा नहीं था, हर कोई अपनी पत्नियों से पहले नहीं मरा, लेकिन वहां बसने वाले विदेशी यहूदियों की संख्या में विदेशी विधवाओं का अनुपात स्थानीय यरूशलेम वासियों की तुलना में अधिक था, और इसलिए विदेशी यहूदी समुदाय आवश्यक रूप से अपनी सभी विधवाओं की देखभाल नहीं कर सका, और वह एक समस्या थी जो चर्च में फैल गई। अब निःसंदेह आज हम जानते हैं कि समाज और समाज के मूल्यों की समस्याएं कभी भी चर्च में नहीं फैलेंगी। दरअसल ऐसा अक्सर होता है। आपको पवित्र भूमि पर प्रवास क्यों करना चाहिए, इसके बारे में एक बात की परंपरा है जिसमें कहा गया है कि चूंकि पुनरुत्थान इजेकील 37 पवित्र भूमि में होगा, इसलिए यदि यहूदी लोगों को कहीं और दफनाया गया था तो उनकी लाशों को वापस जमीन के नीचे लुढ़कना होगा पवित्र भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए। और जाहिर तौर पर उन्होंने सोचा कि यह एक लाश के लिए बहुत दर्दनाक बात थी, इसलिए वे लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें पवित्र भूमि में दफनाया जाए। अब हम वहां विदेशी यहूदी आराधनालयों के बारे में जानते हैं, जैसा कि अध्याय 6 और श्लोक 9 में है। यह बहुत जल्द ही एक के बारे में बात करने जा रहा है, लेकिन संभवतः उनके पास अपनी सभी विधवाओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, और यह चर्च में फैल जाता है। तो प्रेरित क्या करते हैं? प्रेरितों ने, जो शिकायत करने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति प्राचीन काल में सामान्य प्रतिक्रिया थी, उस पर कार्रवाई करने के बजाय वास्तव में संपूर्ण भोजन वितरण कार्यक्रम नाराज अल्पसंख्यक को सौंप दिया। उनके पास कुछ नए नेता हैं, वे साथ चुनते हैं। 12 एक पवित्र संख्या है, 7 पुराने नियम से एक पवित्र संख्या है, इसलिए वे 7 नेताओं को चुनते हैं। जोसेफस हमें बताता है कि आमतौर पर अधिकांश गांवों में 7 बुजुर्ग होते थे जो चीजों का निर्णय करते थे, इसलिए नेताओं के एक समूह के लिए 7 एक अच्छी संख्या थी। निस्संदेह पुराने नियम में भी आपके पास मूसा के अधीन 12 और 70 या 72 बुजुर्ग थे। यहां निर्गमन अध्याय 18 का संकेत है, जहां मूसा ने अपने मिद्यानी ससुर की बुद्धि के माध्यम से मूसा ने अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को उन चीजों के लिए सौंप दिया जो कोई और कर सकता था, उसने उन्हें करने के लिए किसी और को सौंप दिया। कभी कभी हम सब कुछ स्वयं करने का प्रयास करते हैं और चीजें असफल हो जाती हैं। चीजें इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अपनी पुस्तक लेखन के साथ मैं आमतौर पर उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें बिल्कुल सही तरीके से हों। एक बार जब यह छप जाता है तो कभी कभी संपादक मेरे द्वारा कही गई बातों को बदल देते हैं, और मैं उनके द्वारा कही गई कुछ बातों से शर्मिंदा होता हूँ जो मैंने कही थीं। लेकिन जब संभव हो, जब हमारे पास बहुत सारा काम हो, तो हम उसमें से कुछ काम दूसरों को सौंप सकते हैं। इसलिए मूसा ने अपने कुछ प्रशासनिक कर्तव्य किसी को भी नहीं सौंपे। निर्गमन 18:21 में यह उन लोगों के लिए था जो ईश्वर से डरने वाले और भरोसेमंद थे। इसलिए वे सम्मानित लोगों के सदस्य थे जिनका इज़राइल में सम्मान किया जाता था, लेकिन उन्हें ईश्वर भयभीत और भरोसेमंद भी होना था। और यह यहाँ एक मिसाल प्रदान करता है जहाँ वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए सही लोग मिलें। और निर्गमन 18:19-20 में जो कारण बताया गया है वह यह है कि मूसा स्वयं को प्रार्थना और शिक्षा में समर्पित कर सके। ठीक यहाँ की तरह प्रेरित स्वयं को प्रार्थना और वचन की सेवकाई के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। तो यह निर्गमन 18 की ओर एक स्पष्ट संकेत है। अच्छी प्रतिष्ठा होने के कारण यहाँ मुद्दों में से एक सार्वजनिक विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण था। यरूशलेम में इस समय यह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था और यह पूरे भूमध्य सागरीय विश्व में महत्वपूर्ण था। यह नेताओं के लिए योग्यताओं में से एक थी। आपको अच्छी प्रतिष्ठा का होना चाहिए, आपको ईमानदारी वगैरह भी रखनी होगी। इसीलिए प्रथम तीमुथियुस 3:7 में भी हमारी यह आवश्यकता है। खैर, उन्होंने लोगों को नेता चुनने दिया और यह विचार स्पष्ट रूप से अधिकारियों को चुनने की यूनानी प्रथा को दर्शाता है। लेकिन यह यूनानी प्रथा अन्य स्थानों पर भी फैल गई थी। उदाहरण के लिए एसेंस ने भी अधिकारियों का चुनाव किया। फिर एसेंस के बारे में हमें यही बताया गया है। व्यवस्थाविवरण 1:13, लोग एक विकल्प चुनेंगे और फिर नेता विकल्प की पुष्टि करेगा। और इसलिए आपके यहाँ कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन योग्यताओं में सिर्फ अच्छी प्रतिष्ठा वाला होना ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना भी शामिल है। और इसलिए वे ऐसे लोगों को चुनते हैं। और जब वे उन पर हाथ रखते हैं, तो निश्चित रूप से वे पवित्र आत्मा और ज्ञान से भरे होते हैं, जो कि व्यवस्थाविवरण 34:9 में मूसा द्वारा यहोशू पर हाथ रखने के बाद हमने उसके बारे में भी पढ़ा है। खैर, इसके लिए किस तरह के लोगों को चुना गया? उन्हें चुने जाने का एक और कारण था। उन्हें चर्च की विविधता की पुष्टि करने, चर्च के भीतर अल्पसंख्यक समूह की पुष्टि करने के उद्देश्य से चुना गया था। केवल अल्पसंख्यक समूह का कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग। लेकिन केवल आत्मा से परिपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो वास्तव में चर्च के भीतर तनाव के इस मुद्दे को हल करेंगे। ये नाराज अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य थे। सातों नाम अगर आप देखें तो सातों ग्रीक नाम थे। अब हम जानते हैं कि कई यरूशलेम वासियों के ग्रीक नाम थे और शिलालेख हमें यह दिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के नाम नहीं। यहाँ तक कि रोम में, जहाँ अधिकांश यहूदी समुदाय ग्रीक बोलता था, रोम में 40% से भी कम यहूदियों के नाम में कोई ग्रीक भाषा थी। यदि आप उन 12 को देखें जो गलील से थे, उनमें से केवल एक या दो, फिलिप का निश्चित रूप से ग्रीक नाम था, लेकिन 12 में से केवल एक या दो के पास ग्रीक नाम थे। इसलिए हेलेनिस्ट शिकायत कर रहे हैं। भोजन वितरण कार्यक्रम हेलेनिस्टों को सौंप दिया गया था और बहुत स्पष्ट विशिष्ट हेलेनिस्टों के पास ग्रीक नाम थे। उनमें से एक धर्म परिवर्तन करने वाला भी था। इसका मतलब है कि वह एक गैर यहूदी था और उसने यहूदी धर्म अपना लिया। वह अंताकिया का एक धर्मांतरित व्यक्ति था, इसलिए वह यरूशलेम चले गए थे। वह एक प्रवासी यहूदी था। जोसिफ्स हमें दिखाता है कि अंताकिया में बहुत सारे धर्म परिवर्तन करने वाले लोग थे। कौन जानता है, वह उस समूह का हिस्सा रहा होगा जिसने अंताकिया में सुसमाचार का नेतृत्व किया और यहाँ तक कि अंताकिया में सांस्कृतिक सीमाओं को भी पार किया, जहाँ अन्य जातियों ने प्रभु का वचन सुनना शुरू किया। प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा। खैर, हाथ रखने का उपयोग आशीर्वाद के लिए किया जा सकता है, जैसा कि उत्पत्ति 48:14 में है, जब एक पिता अपने बच्चों पर हाथ रख सकता है, या इस मामले में अपने पोते पोतियों को आशीर्वाद देने के लिए। इसका उपयोग उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए भी किया जाता था। मूसा ने गिनती 27 में यहोशू को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए उस पर हाथ रखा, और मूसा के उस पर हाथ रखने के परिणामस्वरूप व्यवस्था विवरण 34:9 कहता है कि वह ज्ञान की भावना से भर गया था, वही भाषा जो हमारे यहाँ अधिनियम 6 में है। एक परंपरा बन गई। बाद में रब्बियों ने, और शायद पहले से ही इस अवधि में, लेकिन यह बाद में प्रमाणित हुआ, जिसे श्मिकाह कहा जाता था, उसका अभ्यास किया जाता था जो हाथ रखना था, न कि उस तरह जैसे आप पाप या किसी चीज को स्थानांतरित करने के लिए बलिदान पर हाथ रखते हैं, बल्कि अधिक में किसी पर निर्भर होना एक भारी तरीके से, ताकि आप उन्हें मंत्रालय के लिए नियुक्त कर रहे थे या आप उन्हें पवित्र कर रहे थे, उन्हें मंत्रालय के लिए अलग रख रहे थे। लेकिन यहाँ अलग रखना वास्तव में आत्मा के उंडेले जाने के साथ है। हम 1 तीमुथियुस 4:14 और 2 तीमुथियुस 1:06 में कुछ ऐसा देखते हैं, जहाँ जब बड़ों ने तीमुथियुस पर हाथ रखा तो उसके मंत्रालय के संबंध में उसे भविष्यवाणियां दी गईं। पौलुस ने अपनी सेवकाई के लिए तीमुथियुस पर हाथ रखा। उन्हें अपने मंत्रालय के लिए एक आध्यात्मिक उपहार, ईश्वर से एक उपहार मिला। लेकिन जाहिर तौर पर संदर्भ से ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से शिक्षण का उपहार है। लेकिन ध्यान दें कि वे उन्हें किस लिए अलग कर रहे हैं, किस लिए उन पर हाथ रख रहे हैं, ताकि उनके पास पवित्र आत्मा और बुद्धि हो। यह प्रारंभ में शिक्षण और उपदेश के लिए नहीं है, हालांकि वे ऐसा करते हैं। लेकिन उन पर हाथ डालने का कारण गरीबों की देखभाल का मंत्रालय है। इससे हमें पता चलेगा कि गरीबों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है, जो प्रेरित मूल रूप से कर रहे थे। खैर, वे सब कुछ नहीं कर सकते थे, और प्रार्थना और वचन की सेवकाई को पहले आना था, लेकिन यह अभी भी एक महत्वपूर्ण सेवकाई थी, और इसे उन लोगों द्वारा किया जाना था जो पूर्वाग्रह से काम नहीं करेंगे। ये वे लोग होंगे जो उचित तरीके से हेलेनिस्टों की देखभाल करेंगे, लेकिन वे अन्य लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होंगे, आत्मा और ज्ञान से भरे लोग, ऐसे लोग जो यह पहचान सकते हैं कि कौन आपको छीनने की कोशिश कर रहा है और वास्तव में कौन है जरूरतमंद, पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर लोग। और फिर श्लोक 7 में हमारे पास एक सारांश कथन है। सारांश कथन अक्सर प्राचीन कार्यों के अनुभागों का समापन करते हैं, और हम देखते हैं कि कई पुजारी भी इस बिंदु पर विश्वास के प्रति आज्ञाकारी बन रहे थे। खैर, उच्च वर्ग के पुजारी मुख्य रूप से सदूकी वर्ग के थे, लेकिन निम्न वर्ग के पुजारी आवश्यक रूप से सदूकी वर्ग के नहीं थे। जकरयाह जैसे लोग संभवतः सदूकी वर्ग के भी नहीं थे। हमने पढ़ा कि कुछ पुजारी वास्तव में फरीसी थे। पुरोहित अभिजात्य वर्ग, जो चीजों को नियंत्रित करता था, कभी कभी वास्तव में गरीब पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण करता था। हमने जोसेफस से पढ़ा कि बाद में वे गरीब पुजारियों का इतना शोषण कर रहे थे कि कई पुजारियों को, क्योंकि दशमांश विशेष रूप से अमीर पुजारियों द्वारा लिया जाता था, कई गरीब पुजारियों को कार्यालय से बाहर कर दिया गया था। वे अब पौरोहित्य नहीं कर सकते थे, उन्हें जाकर जमीन जोतनी पड़ी। हालांकि जैसा कि हमने पहले देखा, यहां स्तिफनुस आत्मा और शक्ति से भरपूर है, वह चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। वे लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन वे विरोध भी भड़का सकते हैं, इसे चरम पर ला सकते हैं। स्टीफन पर आरोप लगाया गया है। यीशु ने गैर यहूदी मिशन अध्याय 1 और पद 8 की आज्ञा दी थी, लेकिन प्रेरित प्रेरितों के काम अध्याय 15 और पद 2 तक यरूशलेम में ही रहे। मुझे लगता है कि वे शायद यशायाह अध्याय 2 के संदर्भ में सोच रहे थे कि ईश्वर का कानून का वचन यहोवा यरूशलेम से निकलेगा। यदि वे सफल हो गए होते और यरूशलेम को परिवर्तित कर दिया गया होता तो अंत आ गया होता। वे उम्मीद कर रहे थे कि यहूदी लोगों के पश्चाताप के बाद अंत आ जाएगा, इसलिए वे अपने बुलावे के प्रति वफादार रहे, यरूशलेम में रहकर प्रभु का वचन वहां से आने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ कि वे वास्तव में स्वयं बाहर जाने लगे। पीतर कुछ मिशनों पर गए अधिनियम अध्याय 9, लेकिन वे यरूशलेम वापस आ गए। जेरूसलम चर्च के भीतर द्विसांस्कृतिक अल्पसंख्यक ने ही भविष्य का वादा किया है। ये हेलेनिस्ट अन्य स्थानों से आए थे। वे इन अन्य संस्कृतियों को उन लोगों की तुलना में बेहतर समझते थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पवित्र भूमि के भीतर बिताया था, और इसलिए भले ही वे नए विश्वासी थे, वे सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने के लिए तैयार थे जिन्हें प्रेरित शुरू में पार करने के लिए तैयार नहीं थे। ल्यूक इनमें से 2 उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका उल्लेख अध्याय 6 और श्लोक 5 में किया गया है। वह प्रेरितों के काम अध्याय 7 में स्टीफन पर ध्यान केंद्रित करता है, और वह दूसरे उदाहरण पर ध्यान केंद्रित करता है जिसका नाम वह प्रेरितों के काम अध्याय 8 में फिलिप है। खैर, स्टीफन यहाँ है दोषी ठहराया जा रहा है। वह हेलेनिस्ट आराधनालय में से एक के साथ बहस में है, शायद उसका अपना हेलेनिस्ट आराधनालय, जिसका अर्थ है कि वह संभवतः लिबर्टिन के इस आराधनालय से संबंधित था। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि वास्तव में उसे महायाजक और महासभा के उन सदस्यों के सामने ले जाया जाता है जो इस अवसर पर उपस्थित होते हैं, तो उसे ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जैसे प्रेरित उससे पहले थे और जैसे यीशु उनसे पहले थे। लेकिन जबकि प्रेरित अब तक इससे बचे हुए हैं, स्टीफन की किस्मत अलग हो सकती है। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 9 अधिनियम अध्याय 5 से अध्याय 6 श्लोक 7 है।